जीव आपके द्वारा बनाए गए जीव हैं, फिर समय भी बोला था दिन में ना रात में ना बाहर ना अंदर। तो इस तरह से उसने बहुत ऐसी कंडीशन डाल दी है कि शायद इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु भगवान की जो है वो अपनी, भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए जीव से उन्होंने कहा था आपके द्वारा बनाए गए किसी जीव से मैं ना बनूं, तो भगवान के जो है ऐसे रूप में प्रकट हुए कि ब्रह्मा जी ने ऐसे जीव बनाए आधा आदमी और आधा शेर, तो कैसे विष्णु के रूप में प्रकट हुए भगवान सिर्फ इनको मारने के लिए। तो ये कोई भी व्यक्ति इस भ्रम को पाले रहता है कि मैं इस संसार में बढ़ूंगा नहीं या इस संसार में आकर मुझे यहां से जाना नहीं पड़ेगा, तो वो बहुत जो है वो भ्रमित रहता है। या फिर हम लोग इस संसार में इस मृत्यु को भूले रहते हैं, या अगर कोई बात कर ले घर में भी या किसी समय या खास करके किसी उत्सव के समय पर चुप रहो चुप रहो इस समय से बात नहीं करते, तो ये तो बस सुख पाते हैं क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु लिखा गया है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में क्या लिखते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु और संभावी है। इवन भगवान इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर भी घटा के उन्होंने कर दिया, इवन स्वयं राम और कृष्ण जो इस धरती पर लीला अवतार के रूप में प्रकट हुए और अन्य में अवतार भी, वो भी इस तरह से चले गए। क्यों? क्योंकि ये जो ये मृत्यु भूमि है। और इस तरह से हम धर्मशास्त्र में देखते हैं कि एक बार एक ऋषि थे जो कि वो मृत्यु को मृत्यु नहीं चाहते, ऋषि शक्ति व्यासदेव के दादा थे, व्यासदेव के पिता हैं पराशर के पिता से ऋषि शक्ति और ऋषि शक्ति के पिता थे वशिष्ठ मुनि। तो इस तरह से जो है वशिष्ठ जी को और भी बहुत पुत्र थे, वशिष्ठ शक्ति जो है इनके ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते। एक बार उन्होंने व्यासदेव से कहा कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता तुम भगवान के अवतार हो कि मेरी मृत्यु ही ना हो। तो व्यासदेव जी ने कहा कि मेरे बस में तो नहीं है, कर आगे चलिए मैं सीधे महाराज से बात करवा देता हूँ, मेरी जो पहुंच है वो तो मैं करा सकता हूँ, कहा चलो चलते हैं। तो दोनों कहा गए यमराज की कोर्ट में चले गए, यमराज खड़े हो गए, व्यासदेव आए एकदम सिक्योर से खड़े हो गए, तो पूछा भगवान कैसे आए, आदर सत्कार किया, तो कहा सिंधी मेरे दादा जी हैं और चाहते हैं कि इनकी मृत्यु ना हो, तो आप मृत्यु के देवता हैं बताइए। तो कहा मैं तो मृत्यु नहीं देता किसी को, मैं तो खाली फैसले देता हूँ, केस डिसाइड करता हूँ, मृत्यु के बाद जब जीवात्मा मेरे पास आता है तो मैं उसको फैसले करके एक दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर देता हूँ, मेरा इतना जवाब है। तो फिर कौन देता है मृत्यु? तो कहा काल पुरुष के पास जाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है। तो व्यास जी जो है वो काल पुरुष के पास जाने लगे, तो उन्होंने उनके दादा ने कहा कि यमराज जी को भी साथ में लो, तो कहा ठीक है ले जाओ। तो यमराज जी उनको कहा कि आप भी चलेंगे हमारे साथ? कहा जरूर। तो यमराज जी, व्यासदेव और ऋषि शक्ति तीनों जो है वो काल पुरुष के पास जाते हैं, कालपुरुष के सामने प्रकट होते हैं, तो वो भी इस तरह से स्वागत करते हैं कैसे यहाँ तक कैसे आए आप लोग, क्योंकि इन लोगों का मिलना आपस में ऑलमोस्ट असंभव है। तो जैसे प्रकट हुए तो कालपुरुष के सामने, तो कालपुरुष कहते हैं कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो जाते मैं कह मेरे दादा जी हैं और ये मरना नहीं चाहते, तो आप ही मृत्यु के देवता हैं और तो इनका कैसे हो? मैं तो केवल जो है मृत्यु, व्यक्ति के मृत्यु की कारण बन रहा हूँ, पर मृत्यु कैसे होगी क्यों होगी ये सब मैं नहीं जानता, मैं तो मृत्यु व्यक्ति का मृत्यु दे देता हूँ। तो फिर ये क्या कौन करेगा? तो ये जो सारा खाता वही है वो चित्र की कोट, क्या होते हैं चित्र के फिल्म के, हाँ चित्र के पास है। तो फिर वापस जो है फिर हम लोग आते हैं, तो क्या वो ऋषि शक्ति जो है व्यासदेव से कहते हैं काल पुरुष को भी साथ ले लो। तो व्यासदेव प्रार्थना करते हैं काल पुरुष से, बुजुर्ग सारे अपने बॉस को देख के एकदम से घबरा गए, उठे खड़े हुए, क्या सेवा है। तो फिर प्यास ने अपना वही प्रश्न दोहराया कि मेरे दादाजी है और ये मानना नहीं चाहते, तो कृपा करके बताइए, और काल को आपके साथ ये कह रहे मैं मृत्यु देता नहीं हूँ, मतलब मैं काम नहीं मानता कि मैं उसे मृत्यु दे देता हूँ, ये कह रहे मैं खाली ये विचार करता हूँ। तो मैंने सुना कि सारे काल आपके पास मौजूद होते हैं। कहा हाँ है, तो मेरे पास ये याद नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। हाथ खाए खाए खोल नहीं पड़े, क्या खोल खोल नहीं खाए। तो जब फाइल पढ़ रहे थे उसमें लिखा था जब भी ऐसा समय होगा, कह रहे ये संयोग होना वैसे तो दुर्लभ है, पर जब भी ऐसा दुर्लभ संयोग जब भी होगा कि काश्यप का पुरुष यमराज जी, चित्रगुप्त और ऋषि व्यासदेव और ऋषि शक्ति जब इकट्ठे होंगे उसी समय ऋषि शक्ति की मृत्यु होगी। और जैसे वो पढ़ रहे थे उस समय ऋषि शक्ति ने शरीर छोड़ दिया, वो पढ़ रहे थे आगे और पीछे ऋषि शक्ति ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि ये ऋषि शक्ति मृत्यु किसने बुलाया, किसने बुलाया मृत्यु को, स्वयं ऋषि शक्ति खुद ने, उनकी मृत्यु नहीं होनी थी, सालाना अवस्था हो, परंतु उन्होंने सब इकट्ठा कर दिया। इन सब का इकट्ठा होना आसान नहीं है, उनके खाते में लिखा था जब भी कामराज व्यास ऋषि शक्ति और चित्रगुप्त इकट्ठे होंगे। आप सोचिए वो लोग मृत्यु लोग रहते हैं, वो ऋषि हैं, वो यमराज के देवता हैं, उनके अंदर काम है, काम कुछ नहीं और रखे, सबको इकट्ठा किसने किया, ऋषि शक्ति ने। तात्पर्य यह है कि मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता, और भगवान की जो शक्ति है तो जो कोई व्यक्ति समझता है कि ये चाहे कोई भी है तो भगवान की शक्ति, उससे अस्थायी भगवान को अचिंत कहा जाता है, कोई चिंता में नहीं आता उनकी शक्ति। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरी मृत्यु तो संभव नहीं है, कि कोई जीव जितने भी जीव बनाए ब्रह्मा जी ने आज तक इस भौतिक जगत में, उससे मेरी मृत्यु नहीं सकती, न दिन में हो सकता है, न रात में हो सकता है, न सुबह न शाम को, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, और जगह की जगह क्या रह जाता है। इस तरह से तो सारे चीजें जो है बांध दिया, पर भगवान देखिए क्या रास्ता निकाले। तो परंतु यहाँ जो चर्चा है उनके जो पुत्र हैं ऋषि हिरण्यकश्यप के चार पुत्र थे और सबसे यशस्वी पुत्र थे प्रहलाद महाराज। और जो प्रहलाद महाराज में बताते हैं कि वो डिवोटी के सारे गुण मौजूद थे जो एक भक्त में होना चाहिए। किसी भक्त का जो है वो एडवांसमेंट जो है ये देख कर समझना चाहिए कि उसके अंदर में कितना सतो गुण जो है, कितना प्रोमिनेंट है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो है कितनी सहन शक्ति आ गई है, कितना सहन कर सकता है वो व्यक्ति जो है, कितना विनम्र है, कितना कर्तव्य पारायण है। तो ये सब अगर हम भक्तों में देखते हैं, अगर हमें लगे कि भक्त में ऐसा है तो निश्चित रूप से वो जो भक्त है वो उच्च कैटेगरी का भक्त है या उच्च श्रेणी का भक्त है। तो भक्तों की जो कैटेगराइजेशन है तो वो केवल उसकी इन गुणों के विकास से पता लगता है। किसी जो व्यापारी है उसका विकास आपको कैसे पता लगेगा, उसका बैंक बैलेंस बहुत बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे धन संपत्ति हो गई है, एक कोठी वहां है, एक फ्लैट वहां है, दो कोठी वहां है, उस रोड पे दो दुकानें हैं, इस तरह से क्या समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत अमीर है, ये बहुत धनवान है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा संपत्ति है। कोई भक्त कितना उन्नत है अपनी भक्ति में इससे पता चलता है उसके उसके अंदर एक दैवी गुण कितने विकसित हुए हैं, कितना आत्मसंयम है उसके अंदर, कितनी विनम्रता है उसके अंदर। किसी राधा राम का मनोरम की जय, श्री कृष्ण नाम की जय, नाम बोले सदा मन की जय, शिव निताय की जय। तो हम किसी भक्त की जो वास्तव में जो शुभ उन्नति है वो इसी से देखते हैं कि उस भक्त में जो है वो कितने ये सब जो दैवी गुण है वो प्रकट हुए हैं। तो हम प्रहलाद महाराज के अंदर देखते हैं वो सारे सद्गुण जो है उनके अंदर प्रकट है। और सब भक्त का सबसे पहला गुण क्या होता है, भगवान शब्देश्वर का जब वर्णन करते हैं, भागवत किसी श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक में तो सबसे पहला हम क्या बताते हैं अभयम। अभयम का मतलब फियरलेस है, फियरलेस। भक्त अगर भगवान के शरणागत है तो सबसे पहले वो फियरलेस होगा, निर्भीक होगा, किसी से नहीं डरता और किसी परिस्थिति से नहीं डरता। किसी से डरने का मतलब है किसी व्यक्ति से, वस्तु से और परिस्थिति से नहीं डरता। उसके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ रहा है वो डरता नहीं। और ये गुण हम प्रहलाद महाराज में देखते हैं, कैसी परिस्थिति की प्रहलाद महाराज के सामने। आप देखिए हम सब जितने लोग भक्ति कर रहे हैं कम से कम हम लोगों के सामने इस तरह की परिस्थिति नहीं है कि जिसके पापा उसको मारने के तैयार थे। हर बार ये सोच सकते इसकी मृत्यु कैसे हो। और एक बार जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को गोद में बिठा लिया, बहुत प्रयास करने के बाद कि मृत्यु जब वो नहीं मरे तो उसने उसको गोद में बिठा लिया। कहा मैंने बहुत प्रयत्न किए पुत्र तुम्हें मारने के, परंतु तुम्हें कभी कुछ हुआ नहीं। देखिए रिसर्चेशन है, तुम ये शक्ति कहां से प्राप्त करते हो। उन्होंने कहा भागवत श्लोक है इसका, ये अशोक श्रेष्ठ बहुत, देखिए कितना व्यवहार में कितने कुशल है। हे अशोक श्रेष्ठ पिताश्री, कि आप जिस शक्ति से वो शक्ति प्राप्त कर रहे हो अत्याचार करने की, मैं उसी शक्ति से शक्ति प्राप्त कर रहा हूं बचने की। सोर्स एक ही है, आप उसी से जो है वो पावर प्राप्त कर रहे हो अत्याचार करने की, और मैं उसी शक्ति से पावर प्राप्त कर रहा हूं बचने की। तो आप देखिए जैसे बिजली का सॉकेट है, पावर पॉइंट एक ही है, पर नीचे से भी है फ्रिज भी चलता है और रॉड भी गर्म होता है और बहुत बड़ी सारी चीजें आप चला भी सकते हैं। तो गर्म और ठंडा दोनों शक्तियां कहां से प्राप्त होती है। पावर सोर्स क्या है, एक ही है, पर उसके कार्य जो है अलग अलग है। तो जो भगवान उनको इस बात की शक्ति दे रहे थे वही भगवान जो है प्रहलाद की रक्षा भी कर रहे। और प्रहलाद महाराज की स्थिति देखिए कैसे उन्नत भक्त थे, कि प्रहलाद महाराज ने अपने पूरे पूरे जीवन में जब जब जो भी भागवत में जितना वर्णन आया है उन्होंने कभी भी भगवान से यह प्रार्थना नहीं की कि मेरी रक्षा करो। भक्ति उन्नति उन्नत उन्नत अवस्था करने की, कभी उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि मेरी अच्छा करो। ये चिंता किसको की थी, स्वयं भगवान कि मुझे इसकी अच्छा करो। द्रौपदी को तो फिर भी हाथ उठा के भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि मेरी प्यार बचाओ। गजेंद्र हो द्रौपदी ये बड़े बड़े भक्त जितने भी आप काफी सारे भक्त देखोगे तभी भी उनको प्रार्थना करनी पड़ती है कि वो मुझे बचाए। परंतु प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना कभी नहीं की मुझे इस परिस्थिति से बचा लो। और उसी निर्भीकता से बोलते रहे हिरण्यकश्यपु के सामने जो है वो जो जिस निर्भीकता से एक छोटे तुच्छ प्राणी के सामने बोलते हैं। हिरण्यकश्यपु के लिए कितना फ्रस्ट्रेशन था आप सोचिए कि समस्त तीनों लोगों का स्वामी, सभी लोग इवन देवता उनकी जो है चाकरी करते थे और उनका खुद का एक छोटा बेटा 5 साल का बेटा भी, 5 साल का बेटा कितना होता है, 5 साल का बेटा उनकी बात नहीं मानता। आप सोचिए व्यक्ति के पास कितने भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, तीनों लोगों में हर कोई उसकी बात मानने को तैयार है, परंतु एक छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा उसकी खुद का बेटा है बात नहीं मानता। वो कितना परेशान होगा। भी गुण है वो सारे गुण भक्तों में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इसी किताब पर में कि 100% तो नहीं होता, परंतु बहुत हद तक जो है वो सारे गुण ऑलमोस्ट भक्तों में आ जाते हैं। मैंने भक्तों से सुना था, बता रहे थे कि एक जीवात्मा में जो है मैक्सिमम 79% तक जो कृष्ण भगवान के समान संबंध आ जाती है। तो बहुत अपने आप बहुत बड़ी बात है कि भगवान के गुरु के समान हो जाए 79%। वो जो 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 भगवान में गुण है वो सारे गुण उसके मंत्र के अंदर मौजूद है। प्रहलाद पहले प्रभुपाद पहले रहे तापा के पहले रहे जो लिखते हैं कि भगवान में एक गुण है वो गोलोक धाम में रहते हैं नाम कह सकते हैं और दूसरी जगह पे भी हो सकते हैं। तो ये गुण प्रहलाद में था कि वो वैकुंठ लोक में भी रहते हैं और मृत्यु लोक में भी रहते हैं। जैसे जब बड़ी महाराज को भगवान वामन ने बांध दिया था, देखिए ये बांस तो कोई साधारण बांस नहीं है, आप समझ रहे हो कि साधारण बांस नहीं है, क्योंकि तीन तीन बार इसके वंश में भगवान ने परिवार में भगवान ने अवतार ले लिया तीन बार, तो साधारण तो नहीं होगा, साधारण परिवार नहीं होगा जिसमें तीन बार भगवान प्रकट हो गए। तो वामन के रूप में हिरणा इसमें नसीब के रूप में और किसके रूप में बराह के रूप में तीन बार भगवान के कुल में प्रकट हुए। तो साधारण रूप तो नहीं है। जब भगवान ने बांध दिया बलि महाराज को तो महाभारत जो है वो प्रहलाद राज में प्रकट हो गए। अब प्रहलाद राज तो वैकुंठ चले गए थे, प्रहलाद राज पीछे प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद इसको बताते हैं कि वो एक साल जो है वो मृत्यु लोक में प्रकट हो जाते हैं कई बार और वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो ये गुण किसका है? भगवान का। ये गुण किसमें आ गया? भक्त में आ गया। तो इस तरह से और ये तो हम देखते हैं कि साधारण लोगों के लिए गुण होगा। एक योगाभ्यास अगर कोई कर रहा है योगी और क्रिया योगी होता है वो कई बार अपने आप को विस्तार भी कर लेता है, या आप देखोगे कि वो इस समय यहां प्रकट हो जाएगा। तो ये भक्ति गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं भगवान की भक्ति करके। तो सबसे पहला जो भगवान बताते हैं 26 गुणों में अवयव, वो अवयव जो है वो लेकिन ये भय जो है वो अभय इतना आसान नहीं है। अवयव जब तक व्यक्ति या डिवोटी या एक साधक अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से अवर्जनम इन दोनों को नहीं करेगा रक्षिष्यति की विश्वास और ये भाव उसके अंदर कभी नहीं आएगा। जब वो भक्ति के चीजों को अनुकूल चीजों को जो है वो करेगा और प्रतिकूल चीजों को छोड़ेगा बहुत दृढ़ता पूर्वक, तो उसके अंदर ये भाव आएगा कि भगवान मेरी अच्छा करेंगे। तब उसके अंदर ये भाव प्रकट होता है कि भगवान मेरी अच्छा करेंगे। ऐसे ये भाव किसी के अंदर आएगा ही नहीं कि भगवान मेरी अच्छा करेंगे। जो ढीली ढाली भक्ति करता है, जो नियमों को ठीक से पालन नहीं करता, जो डिवोटी या जो साधक, उसके अंदर ये भाव कभी नहीं होगा कि भगवान मेरी अच्छा करेंगे। और तभी उसकी जो चेतना है भौतिक होती है, उसकी सारी चेतना भौतिक होती है, चाहे माला करता है चाहे नियम का जो है थोड़े बहुत जिस हिसाब से पालन करता है और सिखा भी रखता है, धोती कुर्ता पहनता है, सब कुछ ठीक है, पर तभी उसका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये दो चीज बहुत आवश्यक है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन। और अनुकूल संकल्प और प्रतिकूल से वर्जन में क्या क्या आते हैं आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। यम और नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से जब और जब रक्षी शक्ति की विश्वास नहीं होगा व्यक्ति अवैध हो ही नहीं सकता। भगवान मेरी रक्षा करेंगे इस बात पर जब तक व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा हर परिस्थिति में वो निर्णय हो ही नहीं सकता। तो हम तो हर परिस्थिति में एक छोटे से छोटे सिचुएशन में ही असत्य का सहारा लेते हैं सिर्फ बचने के लिए। भय असत्य का सहारा क्यों लेते हैं? भय के कारण। तो डिवोटी झूठ क्यों बोलता है? गले में कंठी पहन के आप झूठ बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात है, पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो भय है कहीं ना कहीं, कभी मान मान ना मिलने का भय, कभी अपमानित होने का भय, कभी निकाले जाने का भय, हर तरह का भय। और ये भय का विस्तार है, इसने भय ने अपना बहुत सारा विस्तार कर दिया। और जो जो भी व्यक्ति नियमों को जितने ढीले ढंग से पालन करता है उसके जीवन में उतना अधिक भय रहता है। अगर कोई भक्त बहुत दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन कर रहा है तो आप निश्चित रूप से समझिए उतना उतनी ज्यादा उसके अंदर जो है अभयम होगा, वो इतना ज्यादा जो है वो क्लियरनेस होगा। फिर जो व्यक्ति जो साधक जो डिवोटी जितनी मात्रा में अपने गुरु की शरण लेगा जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में जो है वो अभय होगा। वो अगर गुरु की सेवा सिर्फ 10% कर पा रहा है तो उसके अंदर जो ये स्थिति है उसका 10% होगा, उसका भगवान के विश्वास भी केवल 10% होगा। उसकी गुरु में श्रद्धा अगर 80% है उसकी भगवान में भी श्रद्धा 80% होगी, और उसका उसका फियरलेसनेस जो है वो निर्भयता जो है वो भी 80% होगी, किसी चीज से भी। तो ये कनेक्टेड है। तो आप देखिए ये जो निर्भयता है जो कि प्रहलाद बताते हैं वो निर्भयता एक्चुअल में प्रभुपाद देखते हैं, जब 26 वर्ण का वर्णन हुआ है भगवद गीता के 16वें अध्याय में तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य लिखते हैं कि ये गुण प्रमुखता सन्यासियों में के लिए है, ये जो गुण है वो सन्यासी के लिए है, कि सन्यासी में कम से कम ये सब चीजें जरूर होनी चाहिए, वो उसको परफेक्टली निर्भय होना चाहिए। तो कहते प्रहलाद महाराज ने सारे स्वप्न के जो भगवान थे, फिर जो सद्गुणों की चर्चा में हम देखते हैं आगे जो है वो आप शुद्धि आती है निर्भयता के बाद सत्व सिद्धि, अभयम सत्व संसिद्धि। तो अभयम के बाद होता है सत्व संसिद्धि अर्थात आप शुद्धि। ये आप शुद्धि जो है वो विधि विधानों के पालन करने से आता है। हम जब भक्ति के नियमों का बहुत दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे तो हमारे अंदर भी ये सत्व संशुद्धि या आत्मशुद्धि आएगी। भक्ति के नियम जो है वो हमें कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ये भक्ति के नियम हमें इतने ज्यादा मुश्किल लगने लगेंगे। अभी हमें ये भक्ति के नियम जो है देखिए बहुत बड़े आप सच मान लिए जो पहले के लोग थे उनके सामने के लिए ये सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल सिंपल थे, उनके अंदर ये इनबिल्ट होता था बहुत सारा। पर हमारे अंदर सुनने के बावजूद भी हमारे अंदर ये सारे गुण जो है वो ट्रेनिंग लेने के बाद आएंगे, हमारे अंदर ऐसे प्रकटनी होगी। तो कलयुगी जीवों के लिए ये साधारण रूप में प्रकट करना भी बहुत बड़ी बात है, और तभी हमारे सामने जो है कोई प्रकट नहीं। आप देखो पिछले युगों में जितने भी साधारण लोग भी हुआ करते थे उनके सामने ऋषि मुनि ही प्रकट हो जाया करते थे, पर आज हम देखिए एक भी ऋषि कभी दिखा किसी को, तो श्री ऋषि दिख गए हो, वशिष्ठ जी दिख गए हो, व्यास जी नारद कोई दिख गया हो, नहीं दिखते, क्योंकि ये साधारण सी सिद्धि हमारे अंदर नहीं है, जो कि उस समय में लोगों के में अपने इनबिल्ट होता था, सामान्यता पाया जाता था। तो कलयुग के जीव कितने पतित हैं इसलिए समझा जा सकता है, हम लोगों का जो है कितने पतित जीव हैं। तो प्रभुपाद देखते हैं इसमें कि अगर हम विधि विधानों का पालन अगर बहुत दृढ़तापूर्वक करेंगे तो हमारी भी आप शुद्धि जो है वो हो जाएगी। हालांकि प्रभुपाद इसको कैटेगराइजेशन करते हैं कि ये गुण जो है प्रमुखता सन्यासी को ज्यादा डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, इसका यह मतलब नहीं है कि डिवोटी को नहीं करना चाहिए। आप देखो प्रहलाद महाराज ने ये सारे गुण थे सन्यासी के गुण, निर्भयता किसके अंदर था? प्रहलाद महाराज से ज्यादा निर्भय कौन होगा? सांप के कुएं में फेंक दिया गया, अग्नि में लेके बैठ गई, कोई कहीं भी मैं कुछ तो पता ही फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये सारे गुण जो है वो उनके अंदर था। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसूदन, ये तीसरा गुण है। तो आध्यात्मिक गुण का ज्ञान का जो अनुसूदन है ये सबके लिए मंत्र फिर भी कहा जाता है कि जो सन्यासी को ज्यादा परसू करना चाहिए इस गुण को। फिर है चौथा है दान। दान ये हाउस होल्डर के लिए है केवल, और किसी नियम में से चार और जो आश्रम है उनमें से केवल जो गृहस्थ के लिए दान देने का की जो है वो परिकल्पना की गई है कि गृहस्थ को दान देना चाहिए। सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी, ये तीनों आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम के ऊपर डिपेंड होता है और चीज के लिए नहीं, दान के लिए। इस भौतिक जगत में जो है वो उस एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, क्योंकि ये तीनों जो कैटेगरी के डिवोटी हैं ये धन नहीं कमाते। धन कौन कमाता है? गृहस्थ। तो गृहस्थ का जो धन है उसको निश्चित रूप से जो है अपनी आमदनी का बहुत मोटा नहीं है, पर शास्त्रों तो बात है 50%, और 50% तो हमारे लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं तो कम से कम 10% दान जरूर देना, और अभी दान देने का उचित समय है, कार्तिक महीना बेस्ट टाइम, और आज सबसे बेस्ट दिन है कार्तिक पूर्णिमा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है वो गृहस्थों के लिए। फिर जो दिव्य गुणों में आते हैं, कहें ये सारे गुण भक्तों में स्वयं प्रकट हो जाते हैं अगर भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक करता है, नियमों का ठीक से पालन करते हुए दृढ़ता पूर्वक ये सब करेगा तो उसके अंदर ये सारे गुण जो है अपने आप प्रकट हो जाए। फिर आप संयम, आप संयम जो गुण है ये पांचवा गुण है, ये केवल हाउस होल्डर के लिए, गृहस्थों के लिए आप संयम नहीं होना। उसको जो है इंद्रिय तृप्ति से रिस्ट्रेन करना, अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के लिए संयमित रहना चाहिए। पत्नी है घर में या पति है घर में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो हर तरह की छूट दी गई है। शास्त्रों में केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए जो है एक स्त्री और पुरुष का जो है वो संयोग करने की बात कही गई है, और अगर ये नहीं है तो फिर भोग प्रवृत्ति है। फिर उसमें सेंस क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हैं, खास करके दूसरी दूसरी अन्य जो चीजें लोग प्रयोग करते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स और दूसरी चीजें, ताकि उसके परिणाम से हम बच जाए। मैथिल जीवन तो हो हमारा, बस उसका परिणाम ही हमें सामने ना आए, हम परिणाम से नहीं बचे रहे। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं उसी में कि बहुत बड़ा पाप है, या तो आप मैथिल जीवन रखते हो तो उसका जो भी परिणाम आता है उसको एक्सेप्ट करें। तो बहुत दृढ़तापूर्वक इन चीजों के लिए मना किया गया। फिर प्रभुपाद को लिखते हैं यदि आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथिल जीवन पर संयम रखना होगा। अगर किसी का मैथुन जीवन संयमित नहीं है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति जो है, खास करके गृहस्थों की प्रगति जो है, वो रुक जाती है। उसका जो है आध्यात्मिक प्रगति निश्चित रूप से नहीं होती। फिर यज्ञ पारायणता, कि विभिन्न प्रकार के जो है यज्ञ में सम्मिलित यज्ञों को करना, पर आजकल के समय में वो संभव नहीं है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर सके। तो प्रभुपाद देखते हैं कि हमारे लिए जो है वो संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कह रहे हैं यज्ञ नाम जब यज्ञ उसकी, मैं यज्ञ में जब यज्ञ, तो हम जो है वो संकीर्तन यज्ञ करें, संकीर्तन यज्ञ करें, संकीर्तन यज्ञ में भाग लें, संकीर्तन यज्ञ करने में डिवोटीज की मदद करते, एक ही बात है। फिर स्वाध्याय, ये जो है ये यज्ञ प्रायणता जो है वैसे तो सबके लिए है पर हाउस होल्डर के लिए विशेष रूप से कहा गया है। स्वाध्याय ये गुण जो है ब्रह्मचारी के लिए, कृपा कहते हैं यदि एक्सक्लूसिव फॉर ब्रह्मचारी स्वाध्याय, वैसे सबके लिए स्वाध्याय को विशेष जोर दिया गया है कि ब्रह्मचारियों के लिए तपस्या। तपस्या जो है वो पांच प्रश्नियों के लिए है, उसको अधिक से अधिक तपस्या करनी चाहिए, इसका मतलब कि दूसरे लोग ना करें, पर किसका प्रोमिनेंट किसको करना चाहिए वो जिसमें बताया गया है कि वानप्रस्थ को अधिक से अधिक तपस्या करनी चाहिए। तो ये तो और तपस्या का मतलब आप सबको मालूम है, मन से करना, वाणी से करना और शरीर से करना। फिर जो है वो इनकन्वीनियंट सिचुएशन को यानी असुविधा की जो चीजें हैं उसको अपने जीवन में स्वयं से लेना, वो जो है तपस्या है। असुविधाओं को अपनी अपनी इच्छा से जो है असुविधाओं को लेना, 3 बजे उठना, 4 बजे उठना सर्दी के महीने में और भगवान का जप करना, तो ये अपने आप में असुविधा है, इसको अगर जो भी करेगा ये तपस्या है। हम जैसे 4 दिनों का पालन करते हैं ये तपस्या है। कलयुग में तो 2 घंटे सिटिंग पोस्चर में ऐसे बैठना भी तपस्या है, क्योंकि ये भी बैठा नहीं जाता, पर दूसरे युग में तपस्या नहीं है। आपको पता है कलयुग में सब युगों का तपस्या है, किसी तीनों युग में से किसी युग में तपस्या नहीं था, तब सत्य सत्य बोल दो, पर कलयुग में तपस्या है सत्य बोल दो, क्योंकि हम आते ऐसी पड़ गई इतना हैवी हो गया है कि एकदम से झूठ बोलते हैं। और जो भी व्यक्ति चाहे जो भक्त है या अभक्त है, जो भी ज्यादा बात करता है वो झूठ बोलता है, सिंपल फॉर्मूला है। सत्य ज्यादा है ही नहीं संसार में, बहुत कम सत्य है, जो ज्यादा बातें करेगा इसका मतलब झूठ बोलता है। प्रभुपाद कहते हैं कि केवल भगवान कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त अगर हम जो भी चर्चा करते हैं जो भी चर्चा करते हैं ये सब जो है वो प्रजल्पा का हिस्सा है, बहुत कम बोलना चाहिए। ये भी जो है भक्त का एक गुण है, मौन ही बैठे रहना, मौन रहना, मौन का मतलब कि मौनी बाबा है, मौनी अमावस्या के ऊपर मौन रहना। कई यहां आपको बहुत प्रसिद्ध रहता है, आप सबने सुना है कि बड़े सारे साधु हैं खास करके मायावादी और ब्रदर, ये लोग मौनी अमावस्या को बोलते नहीं, एक मॉर्निंग अमावस्या अभी तक नेक्स्ट मंथ में आएगा, पौष महीने की जो अमावस्या होती है उस अमावस्या वो मॉर्निंग अमावस्या होती है, मॉर्निंग अमावस्या को बोलते नहीं है लोग, माँ की अमावस्या को भी रात कहते हैं, तो माँ की अमावस्या को मॉर्निंग अमावस्या होती है, तो उस दिन वो नहीं बोलेंगे सुबह से लेकर रात तक, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं केवल कृष्ण कथा के अतिरिक्त जो है वो कुछ बोलना नहीं है। एक फिलोसफर था, कहता था कि हमेशा खामोश रहो, कुछ मत बोलो, परंतु यदि लगे कि अब बोलना ही पड़ेगा, कि अब खामोशी से बेहतर है बोलना पड़ेगा, तभी व्यक्ति को अपने मुंह बोलने चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए। हमारी बहुत सारी एनर्जी से सेव होती है, आपको पता है शरीर शरीर के 80 अंग काम करते हैं, हम बोलते हैं 80 ऑर्गेन्स जो है एक साथ काम कर रहे होते हैं, 80 जब हम बोलते हैं, कोई साइंस के स्टूडेंट होगा तो पता होगा नाम पे तो ये कह रहे 80 जो ऑर्गेन्स हैं वो एक साथ काम करते हैं बोलने में, इसलिए बोलने बोलने में इतनी एनर्जी लगती है, इसलिए कम बोलना चाहिए। भक्तों के लिए बताया गया है इसको कम से कम बोलना चाहिए, सरलता सरलता सबके लिए है, कॉमन टू ऑल, सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थी और वानप्रस्थी। सरलता का मतलब है चीजी प्रपंच चीजी से दूर रहना, किसी भी चीज में जो है, पर जिसकी समस्या है कार्यों में कि जिसकी जितनी क्षमता होती है उतने लेवल की चीटिंग कर लेता है। मेरी जितनी चीटिंग करने बेईमानी की मेरी जितनी क्षमता होगी, मान लीजिए किसी की क्षमता ज्यादा ज्यादा करेगा, मुझे पता है मैं ऐसे लेकर फल चुरा सकता हूँ, ये मेरे अंदर है, फल ही चुरा सकता हूँ। बहुत खतरनाक है वक्त के लिए। इतने साल बीत गए, इतने 15 साल भक्ति के, कितने साल से बोली 15 साल से, 15 साल में भगवान पर विश्वास नहीं हुआ, 15 साल बीत गए भक्ति में। आप सोचिए कि क्या उपलब्धि रही उसमें। एक बिजनेसमैन जो 10 साल तक 8 साल तक 7 साल तक अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किए हो गया, अभी भी उसका घाटा होता तो आप उसको क्या मानोगे, क्या मानोगे आप उसको कि फेल्योर है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन नहीं है, 7 साल से एक बिजनेस कर रहा है और उसको बिजनेस करना नहीं आता, हर बार फेल होता है। हम 10 साल से लगे हुए हैं, अभी भी जो है 2 घंटे बैठ के चैंपियन नहीं कर सकते, हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर सकते, हम ठीक से जो है बैठ करके जप नहीं कर सकते, हमारे बीच में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, कुछली आती है, फोन आता है, परेशानी रहती है, उधर देखते हैं उधर देखते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा मंदिर में, मेरे देखे क्या काम चलेगा नहीं, मैं नहीं देखूंगा नहीं पता कुछ हो जाएगा, आसमान नहीं मिलेगा, यकीन मानिए जो भगवान का भजन करता है उसको तो आसमान नहीं मिलेगा। इसी में परेशान रहते हैं, फिर घूम के चैटिंग होती है, साइड सीन चैटिंग होती है, मैनेजरियल चैटिंग होती है, बट दुनिया भर की चैटिंग होती है, तो आप उसको क्या मानोगे उस बिजनेस में, उस व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या मानोगे आप, असफल व्यक्ति है। 10 साल में इसने ये नहीं सीखा कि चैटिंग कैसे करनी है, 10 साल में उस व्यक्ति ने ये नहीं सीखा मुझे बिजनेस कैसे करना है, कैसा बिजनेस लेना हो, कैसा भाग्य 10 साल में 5 साल 7 साल हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई 12 से 15 साल तक अगर इस डिवोशनल सर्विस में है और वो अभी नामाभास के स्टेज तक नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब जो है वो बहुत बड़े बड़े अनर्थ कर रहा है, बहुत बड़े बड़े अपराध कर रहा है। 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 साल, 10 साल, 15 साल, अनर्थ के 15 साल, नामाभास के 20 साल, वैष्णव काल के 15 साल निकल गए, चले नहीं कहा और क्या करना चाहिए, स्टैंप पर लिख के देंगे कि तुम्हारे अपराध बढ़ते हैं इसलिए तुम्हारी चैटिंग नहीं होती है, कौन लिख के देगा, कौन बताएगा, खुद समझना पड़ेगा कि मैं इसलिए 2 घंटे चैटिंग नहीं कर पाता, मेरा इसलिए तो मन नहीं लगता है, मेरा इसलिए मारा पड़ती नींद आ जाती है क्योंकि मैं अपराध करता हूं, क्योंकि मैं बड़े बड़े वो सारी चीजें करता हूं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तभी तो मेरे साथ होता है, भगवान ऐसा कैसे होने देंगे आपके साथ, अगर हम दृढ़ता होकर भगवान की भक्ति करते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं साथ, हम थोड़ा पाप भी कर लें, थोड़ा पुण्य भी कर लें, थोड़ा जप भी कर लें, थोड़ा अपराध भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, मिक्स कर लेते हैं सब कुछ, मिक्स भक्त सब कुछ मिक्स कर लेता है तो वह खिचड़ी भी नहीं रह जाती, इतनी सारी चीजें मिक्स हो जाती है खिचड़ी भी नहीं रह जाती, कुछ ज्यादा चीजें मिक्स कर दोगे तो वो क्या है सब कुछ वो जो खाने लायक भी रह जाती है, कुछ ज्यादा चीजें मिक्स हो रही है तो ये आत्मावलोकन कौन करेगा, सिंह में एक गुण है मतलब आपने वर्ड सुना है सिंहावलोकन, सिंहावलोकन सिंह जब बहुत आगे चलता है तो पीछे मुड़ के देखता है, उसको कहते हैं सिंहावलोकन, सिंह पीछे मुड़ के देखता है कोई और तो नहीं आ रहा मेरे पीछे तो नहीं है कोई, तो भक्त को ही सिंहावलोकन करना चाहिए, मेरी यात्रा के मेरे इस चैटिंग के 7 साल हो गए, अभी भी होता नहीं है, जान बुझ कर कई बार हम लोग ऐसी जगह पर बैठते हैं यहां से बहुत कुछ दिखता रहे, कई बार चलते करते हैं, कई बार आराम से प्रयास ही नहीं करते पीछे जाता है। ये सारे संपूर्ण जो जो प्रहलाद महाराज में हमारे अंदर कैसे प्रकट होंगे, हम सोचते हैं प्रहलाद महाराज के प्रहलाद महाराज को असुर के कुल में थे और इतने भयानक असुर के कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके साथ कम से कम ऐसा तो नहीं है, हर घर में लोग राम और कृष्ण का नाम सुनते हैं और गाते हैं बोलते हैं, क्योंकि हम हृदय से कमजोर हैं। अगर सत्यता और ईमानदारी हमारे लिए सहज है तो कृष्ण को प्राप्त करना भी हमारे लिए बहुत सहज है। जिसके लिए सत्यता और ईमानदारी सहज नहीं है उसके लिए कृष्ण को प्राप्त करना वह सहज नहीं है, सारा जीवन लगा रहेगा तभी कृष्ण प्राप्त नहीं होगी, कई जन्मों वाले हम चल रही ये निश्चित है कि हर मान घट नहीं जाएगा। परंतु ये जो है कई जन्मों वाली भक्ति होगी। हम समय दे रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, सब कुछ करते हैं, तब देखिए हम पूरी गंभीरता से नहीं करते। एक बार योगी दस गोपाल जी गोस्वामी महाराज बताते हैं लेक्चर में कि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति डिवोशनल सर्विस में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है वो व्यक्ति जो है वो इसको प्राप्त नहीं कर सकता। समुद्र में के ऊपर तैरने वाले व्यक्ति को समुद्र के अंदर जो पड़े हुए हीरे हैं वो नहीं मिलेंगे, पांव भीगने के खौफ से जो समुद्र से बाहर खड़ा रहता है वो व्यक्ति कभी समुद्र के अंदर की मोती को कभी ले नहीं पाएगा। इस तपस्या के कष्ट से, इस भक्ति में छोटे मोटे जो चीजें आती हैं उसके कष्ट से अगर हम दूर रहेंगे, उससे हम भागते रहेंगे तो हम उस डिवोशनल सर्विस के कष्ट की जो मोती है उसको कभी कभी हम देख ही नहीं पाएंगे, पर जो लेने की बात तो दूर की है। झुंड में चलना और चलना भैंस और घेंट का काम होता है। जो व्यक्ति डिवोशनल सर्विस जिसको बहुत गंभीरता से डिवोशनल सर्विस करने आए हैं उसको अपना उसकी अपर एक बार अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे भगवान से कि ऐसा भक्त कैसा होगा, तो भगवान ने कहा उसकी चाल अलग होगी, उसका बात करने का तरीका अलग होगा। वही संक्षिप्त का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो जो बहुत गंभीरता से भक्ति कर रहा है उसका सब कुछ अलग होगा, आपको दिख जाएगा। परंतु क्या होता है, हम जैसे होते हैं हमें वैसे लोग मिल जाते हैं। तुलसीदास राम राम समाज से एक खंड लिखते हैं, तुलसी जस भव तव्यता तैसी मिली सहाय। जैसी हमारी जो है स्थिति होगी, जैसे हमारे अंदर में जो अंदर की जो भावनाएं हैं उसी प्रकार के दोष हमें मिलते हैं, उसी प्रकार का वैष्णव हमें मिलता है, उसी प्रकार का भक्त हमें मिलता है। हर तरह के भक्त हैं यहाँ पर, यहाँ भी बाहर भी हमारे संस्थान में पनवरिया भक्त, खैनी वाला भक्त, कान वाला भक्त, नियम वाला भक्त, अलग अलग टाइप के भक्त हैं। वो चार नियम में से एक नियम तोड़ता है, तीन नियम पालन करता है, कोई चार नियम से दो पालन करता है, दो तोड़ता है। हम कहते हैं आप देख लो आपको किसका आसन करना है। घूमने वाला भक्त जो है चैन क्या होता है, गाड़ी चलाने करके माला करने वाला भक्त, गाड़ी चला चला के माला करता है, सोलह बार ना हो कि बस ये साथ में चलता है गाड़ी चलते रहे। हर तरह के भक्त है, आपको क्या है, आपको किसका सहन करना है। इस दुनिया से भोग कभी खत्म नहीं होगा, इस दुनिया से ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं होगी, इसी में से तभी मैं भगवान कह रहे हैं मनुष्य का नाम सहस्र शुरू कष्ट के सिद्ध है, हजारों हजारों में से हमारे अगर इन आने वालों में से यत्ता मन सिद्धा इन सिद्धों में से कोई एक, क्यों भगवान को दुश्मनी है, हमें बाहर करना चाहते हैं, हमें अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं, नहीं हम नहीं जानना चाहते, हम ईमानदार नहीं, हम नहीं जानना चाहते। तो भक्तों में जब सदगुण प्रकट होंगे उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आज तक एक भी बोटी मुझे पूरा बता दीजिए इस भागवतम के कैरेक्टर में किस कहीं पर भी जो बड़े आसानी से भक्ति कर गया, उसका जो भौतिक जीवन बड़ा आसानी से चल गया, सब कुछ सुख रहा, बिजनेस बड़ा अच्छा चलना चाहिए, पैसे भी बहुत आने चाहिए, आपकी भी टॉप क्लास का होना चाहिए। बता दीजिए कोई ऐसा एक योगी बता दीजिए, ध्रुव से लेकर प्रहलाद, भक्ति देव, पृथु, जितने भी आप नवम स्थान पढ़ेंगे तो एक से एक भक्त का वर्णन किया है। किसी भी भक्त का जो है वो एग्जाम्पल देना बहुत आसान है, संतुका, पर संतुका बनना आसान नहीं है। दस बार व्यक्ति ने नहा के आया, दस बार व्यक्ति ने थूक दिया उसके ऊपर, कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोला। जब ग्यारह बार व्यक्ति ने थूका तो उतना भी कुछ नहीं बोले संतुका, तो वो व्यक्ति परेशान हो गया। आप समझ रहे हो वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, ग्यारह बार थूक दिया मैंने इसके ऊपर तब भी कुछ नहीं बोला। तो उसका सुनता शिष्य बन गया, कहा महाराज ये कैसे हो गया, आप ही के पास से मुझे ग्यारह बार गंगा स्नान का फल मिला। ये भक्त सुनना बड़ा आसान है, सुनने भी बड़ा अच्छा लगता है, बनना बहुत कठिन है। हमें तो कोई कुछ भी, हमें तो दूसरों से पता भी लग जाए कि प्रभु जी उसने आप पता आपके बारे में कुछ बोला था, अच्छा हम खुद अपनी असलियत पर आ जाते हैं, उसकी भी औकात बता देते हैं। तेरे को बताता हूं मैं भक्ति नहीं करता, कुछ नहीं करता हूं। ये भक्त के लक्षण है। प्रहलाद महाराज जैसे हमारे लिए एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो हम हमारे अंदर जो है अगर इस तरह की भक्ति हमें उत्पन्न करने तो हमें इनके तरह से कुछ ये जो है उनको करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई है इसमें, हालांकि मैं उसकी एक चीजों में बता रहा हूं आपको। एक बहुत सुंदर इसमें श्लोक है, समासत्रोच मित्रे च प्रथमान अपमानयो सीतासन सुदीपेषु समासंग विवर्जिता तुल्यमिल्ला प्रेमोऽपि संतुष्टा येन केनचित् अनिकेता श्रीमती भाग्यमान्ये प्रियोदरा। भगवान भगवत गीता के बारहवें अध्याय में सत्रह से लेकर के सॉरी ये बारह से चौदह से लेकर सत्रह श्लोक तक में उन्नीस श्लोक में पांच श्लोकों में जो है बता रहे कि मुझे कौन सा भक्त बहुत प्रिय है, जो सुख दुख में सब रहता है, मान अपमान में सब रहता है। अगर तुल्य निंदा कितन मौन मौन रहता है, मान और अपमान में, शत्रु और मित्र में, हानि और लाभ में, यश और अपयश में, सबको एक जैसा देखता है। चलो हम एक जैसे नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, हमारी स्थिति नहीं है, तो कम से कम हमारे अंदर जो है दुख के प्रति या हमारे अंदर जो कुछ भी जो चीजें आती हैं आप मान लीजिए, तो उसको कम से कम हम बाहर ना निकालें, उसको कम से कम सहन कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कि हमें किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तो कम से कम उस द्वेष को ना बताएं किसी को, वो द्वेष को प्रकट ना करें। अभी मैं आ रहा था प्रभु जी से बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि ऑलरेडी मारा व्यक्ति को परेशान करके नीचे गिरा दिया, हमें नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं। कोई भक्त आपको लगता है खराब हो रहा है उसको मार गिरा दोगे, आपको गिराने की क्या आवश्यकता है। ये काम कृष्ण उनकी माई चंद्र व्यक्ति कर रही है, तो हमें किसी की निंदा करने की आवश्यकता क्या है। भगवान गिरा देंगे उसको बाहर गिरा दोगे, छठनी हो जाएगी अपने आप, आपको छाटने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है ये भक्त गंगा है, गुमारा कर रही ना अपने आप ही, ऐसे व्यवस्था कर लेते हो आज। तो भक्तों का जो समूह है जो जैसे प्रहलाद महाराज में है, वो उनके लिए हमें अपने भक्ति के जो नियम दिए गए हैं, प्रभुपाद ने जो पैकेज दिया है उसको दृढ़तापूर्वक करेंगे, उसमें पूरा जब दृढ़तापूर्वक करेंगे तो हमारे अंदर जो है वो विश्वास उत्पन्न होगा कृष्ण के लिए अच्छा करेंगे, कृष्ण ये विश्वास होगा तो हम अभय अर्थात हम निर्भय हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।